एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिन्होंने सचमुच मतलब सचमुच दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। निकोलस कॉपरनिकस 1473 में जन्मे पोलैंड के एक विद्वान, और उन्होंने क्या किया?
उन्होंने एक झटके में 1300 साल पुरानी सोच को चुनौती दे डाली।
बिल्कुल, जरा सोचिए, कोई आपको बताए कि भाई सदियों से जिसे हम ब्रह्मांड का केंद्र मानते आए हैं वो पृथ्वी, वो असल में केंद्र है ही नहीं।
कमाल है।
और ये उस जमाने में कहा जब यूरोप एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था, है ना?
हाँ बिल्कुल, वो एक तरह से मध्य युग का अंत था और आधुनिक वैज्ञानिक सोच की सुबह हो रही थी।
पुनर्जागरण जिसे कहते हैं।
हाँ, रेनेसां, कला, साहित्य, सोच सब में नई जान आ रही थी। फिर वो ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, लोग पुराने ग्रीक रोमन ज्ञान को फिर से पढ़ रहे थे, समझ रहे थे।
और ज्ञान फैल भी तेजी से रहा था प्रिंटिंग प्रेस की वजह से।
सही कहा, प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। हाँ। कोलंबस जैसे लोग नई दुनिया खोज रहे थे, तो माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि पुरानी जमी हुई बातों पर सवाल उठना वो लाजमी सा हो गया था।
लेकिन फिर भी टॉलेमी का वो भू केंद्रित मॉडल, मतलब पृथ्वी केंद्र में, ये तो 13 सदियों से चला आ रहा था, ये तो पत्थर की लकीर जैसा होगा।
हाँ, और देखिए, ये सिर्फ कोई खगोल विज्ञान का मॉडल नहीं था, ये लोगों के दर्शन से, उनके धर्म से, उनकी अपनी पहचान से जुड़ा हुआ था।
अच्छा, कैसे?
भाई पृथ्वी केंद्र में, इंसान उस केंद्र पर, सब कुछ ईश्वर की बनाई एक तय योजना का हिस्सा लगता था। अब इस पूरी सोच को हिलाना ये कोई छोटी बात नहीं थी।
सही।
कॉपरनिकस का काम इसलिए सिर्फ गणित या खगोल का नहीं था, वो जबरदस्त बौद्धिक हिम्मत का भी काम था। उन्होंने एक पूरे विश्व दृष्टिकोण को, एक पैराडाइम को चैलेंज किया।
तो ये हिम्मत, ये सोच आई कहाँ से? चलिए उनके सफर की शुरुआत से देखते हैं। जन्म हुआ पोलैंड के थॉर्न शहर में, आज का टुरून।
हाँ।
एक अमीर तांबे के व्यापारी के घर। लेकिन पिता का साया बचपन में ही उड़ गया। शायद 10 साल के थे वो तब।
हाँ, और तब उनके मामा लुकस वाटसन रोड, वो सामने आए, वो उनके सरपरस्त बने, और ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी मतलब निर्णायक शक्ति थे।
वो चर्च में थे शायद।
हाँ, चर्च में बड़े ओहदे पे थे, बाद में तो वार्मिया के प्रिंस बिशप बने, और उन्हीं की वजह से कॉपरनिकस को उस जमाने की बेहतरीन तालीम मिल सकी।
कहाँ पढ़े वो?
पहले क्राको विश्वविद्यालय गए।
हाँ?
वहाँ गणित पढ़ा और टॉलेमी को जो मॉडल था उससे वाकिफ हुए।
फिर वो इटली भी गए थे शायद काफी लंबे समय के लिए।
हाँ, करीब 10 साल।
हाँ।
लगभग एक दशक इटली में गुजारा, और इटली तो उस वक्त ज्ञान का गढ़ था।
हाँ।
वो लोग ना पड़ुआ, फेरारा, इन मशहूर विश्वविद्यालयों में पढ़े। वो
क्या पढ़ रहे थे वहाँ, खगोल विज्ञानी?
नहीं, मजे की बात यह है कि मुख्य पढ़ाई तो कैनन लॉ, यानी चर्च के जो नियम कानून होते हैं, और मेडिसिन की थी।
अच्छा।
लेकिन असली दिलचस्पी, वो जो जुनून था, वो खगोल विज्ञान में ही जागा। वहीं उन्होंने ग्रीक भाषा सीखी।
ग्रीक क्यों?
ताकि वो पुराने खगोल शास्त्रियों को, जैसे टॉलेमी को, उनकी असली भाषा में पढ़ सकें, सीधे स्रोत तक पहुंच सकें। और वहीं उनकी मुलाकात डोमिनिको मारिया नोवारा जैसे खगोल शास्त्री से हुई। नोवारा ने उन्हें सिखाया कि जो स्थापित सिद्धांत हैं उन पर भी सवाल उठाना जरूरी है, आंख बंद कर मान नहीं लेना।
क्या किसी और विचारधारा का भी असर पड़ा उन पर इटली में?
हाँ, एक और चीज थी, नव प्लेटोवाद, न्यू प्लेटोनिज्म। इस सोच में सूर्य को एक खास दर्जा दिया जाता था, लगभग दिव्य जैसा, रोशनी का, जीवन का स्रोत।
तो क्या इसने उनके सूर्य केंद्रित मॉडल में मदद की?
देखिए, ये कहना मुश्किल है कि सीधा कितना असर था, पर यह सोचना दिलचस्प है कि शायद इसने कोपरनिकस को ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य को रखने के लिए सिर्फ गणितीय वजह नहीं दी, बल्कि एक दार्शनिक वजह, एक तरह की सुंदरता की तलाश भी दी हो।
एक सामंजस्य की तलाश।
बिल्कुल। खैर, 1503 में उन्होंने कैनन लॉ में डॉक्टरेट ली और वापस घर लौटे प्रशिया।
और वापस आकर वो फ्रम्बॉक कैथेड्रल में कैनन बन गए। पर जैसा आपने कहा, वो सिर्फ खगोल शास्त्री नहीं थे, उनका काम तो काफी फैला हुआ था।
हाँ हाँ बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। खगोल विज्ञान उनका पैशन था जरूर, लेकिन उनकी रोज की जिंदगी बहुत अलग थी। वो चर्च की जमीनों का, संपत्ति का हिसाब रखते थे।
अच्छा।
एक काबिल डॉक्टर की तरह मरीजों का इलाज करते थे, राजनीतिक मामलों में सलाह मशवरा देते थे, यहां तक कि उन्होंने पोलैंड की जो मुद्रा व्यवस्था थी उस पर एक अहम दस्तावेज लिखा, मोनेटे चुडेंडे राशियो।
अरे वाह, मल्टी टैलेंटेड थे मतलब।
बिल्कुल। और खगोल विज्ञान वो अपने खाली वक्त में करते थे, कैथीड्रल के एक टावर में बैठकर। ये उनका एक निजी गहरा शौक था।
और इसी निजी शौक पर अपने इतने बड़े क्रांतिकारी विचार पर वो लगभग 30 साल तक चुपचाप काम करते रहे। दुनिया को बताने में इतनी हिचकिचाहट क्यों?
वो स्वभाव से ही बहुत सावधान थे। उन्हें पता था कि उनके विचार कितने विस्फोटक हैं। डर था कि लोग मजाक उड़ाएंगे या शायद चर्च नाराज हो जाएगा, उनके खिलाफ हो जाएगा।
हाँ, ये डर तो वाजिब था शायद।
बिल्कुल, उन्होंने खुद बाद में लिखा भी अपनी किताब की प्रस्तावना में कि मेरे मत की नवीनता और असंगति के कारण मुझे जिस अवमानना का डर था उसने मुझे लगभग पूरी तरह से उस काम को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जिसे मैंने शुरू किया था। सोचिए।
बाप रे, तो फिर उन्होंने कुछ शुरुआती काम तो किया होगा, कुछ लिखा होगा।
हाँ, करीब 1514 के आसपास उन्होंने एक छोटा सा मसौदा तैयार किया था, कमेंटोरियोलिस नाम था उसका। उसमें सूर्य केंद्रित मॉडल की मोटी मोटी बातें थी पर गणितीय सबूत ज्यादा नहीं थे, और उसे भी उन्होंने बस अपने कुछ गिने चुने दोस्तों में ही बांटा था, बहुत ही सीमित दायरे में।
तो फिर वो बड़ी किताब, उनकी महान कृति डी रेवोल्यूशनिबिस, वो आखिरकार छपी कैसे अगर वो इतने हिचकिचा रहे थे तो?
इसका पूरा श्रेय जाता है एक युवा जर्मन गणितज्ञ को, जॉर्ज जोकिम रेटिकस।
रेटिकस?
हाँ, रेटिकस ने कॉपरनिकस के काम के बारे में कहीं सुना और वो इतने प्रभावित हुए कि 1539 में वो सब छोड़कर उनसे मिलने फ्रॉमबर्ग ला गए।
अच्छा।
और सोचिए, रेटिकस एक प्रोटेस्टेंट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और वो एक कैथोलिक कैनन से सीखने आ रहे थे।
ये उस जमाने में बड़ी बात थी।
सही। रेटिकस करीब 2 साल कॉपरनिकस के साथ रहे और वो लगातार उन्हें मनाते रहे कि आप अपनी किताब छपवाइए, ये दुनिया के लिए जरूरी है। उन्हीं के जोर देने पर आखिरकार कॉपरनिकस माने।
और वो कहानी भी है कि किताब की पहली कॉपी उन्हें बिल्कुल अंत समय में मिली।
हाँ, वो बहुत मशहूर किस्सा है। कहते हैं कि किताब की पहली छपी हुई प्रति उन्हें तब मिली जब वो 1543 में अपनी मृत्युशैया पर थे, अपने आखिरी पल्लों में।
चलिए अब उस विचार पर आते हैं जिसने सच में सब कुछ बदल दिया, सूर्य केंद्रित मॉडल, हीलियोसेंट्रिक मॉडल। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो क्या था ये?
बहुत आसान, कोपरनिकस ने कहा। देखो भाई, ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं।
ठीक है।
और पृथ्वी वो बाकी ग्रहों की तरह ही है, वो दो काम करती है। एक, अपनी धुरी पर घूमती है
जिससे दिन रात होते हैं।
बिल्कुल। और दूसरा, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है
जिससे साल बदलता है।
एकदम सही, बस इतनी सी बात, लेकिन क्रांतिकारी।
और ये उस समय के टॉलेमी वाले मॉडल से कितना अलग था? सुने वो बड़ा जटिल था।
हाँ, टॉलेमी के मॉडल में पृथ्वी बीच में एकदम स्थिर थी, हिले बिना। सूरज, चांद, तारे, सारे ग्रह सब उसके चक्कर काट रहे थे।
सुनने में तो ये भी ठीक लगता है, लेकिन एक मुश्किल थी। ग्रहों की चाल आसमान में बड़ी अजीब दिखती थी, कभी वो आगे जाते लगते थे, कभी धीमे होकर पीछे हटते लगते थे।
हाँ, मैंने सुना इसके बारे में, रेट्रोग्रेड मोशन कहते हैं शायद, वक्री गति।
बिल्कुल, वक्री गति। अब इसे समझाने के लिए टॉलेमी के मॉडल में बहुत सारे गणितीय तिकड़म लगाने पड़ते थे।
तिकड़म जैसे?
जैसे कल्पना कीजिए कि ग्रह एक छोटे पहिए पर घूम रहा है और वो छोटा पहिया खुद एक बड़े पहिए पर घूम रहा है और वो बड़ा पहिया पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। इन्हें एपिसाइकल और डेफरेंट कहते थे, मतलब हिसाब किताब बहुत ज्यादा जटिल हो गया था। तो कोपरनिकस के मॉडल ने इसे आसान कर दिया।
हाँ, यही उसकी खूबसूरती थी। कोपरनिकस के मॉडल में ग्रहों की ये वक्री गति अपने आप समझ में आ जाती थी, कोई अलग से पहियों पर पहिए नहीं चाहिए थे।
वो कैसे?
पूछे, पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही है और मंगल भी। पृथ्वी अंदर की कक्षा में है तो तेज चलती है, जब तेज चलने वाली पृथ्वी अपनी कक्षा में धीमी चलने वाले बाहरी ग्रह जैसे मंगल से आगे निकलती है।
हाँ।
तो हमें मंगल पीछे जाता हुआ दिखता है, ठीक वैसे ही जैसे तेज ट्रेन से देखने पर बगल वाली धीमी ट्रेन पीछे जाती हुई लगती है।
अरे वाह, ये तो बहुत सरल व्याख्या है।
बिल्कुल, कोपरनिकस ने यही कहा कि मेरा मॉडल ज्यादा सरल है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा सामंजस्यपूर्ण है।
और उनकी वो महान किताब डी रेवोल्यूशनिबिस ऑर्बियम कॉलेस्टियम ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर्स जो 1543 में आई, उसका क्या महत्व था फिर?
देखिए, वो सिर्फ एक नया आइडिया भर नहीं था, वो गणित और ज्यामिति का एक जबरदस्त कठोर प्रदर्शन था। 6 हिस्सों में बटी हुई एक मोटी किताब।
6 हिस्से?
हाँ, और वो सीधे सीधे टॉलमी की 1300 साल पुरानी महान किताब अल्मेजिस्ट उसको टक्कर दे रही थी, उसे बदलने के इरादे से लिखी गई थी।
अच्छा।
कोपरनिकस ने उसने अपने मॉडल को साबित करने के लिए बहुत विस्तृत गणनाएं दी, ज्यामितीय प्रमाण दिए, और उन्होंने इसे सिर्फ दार्शनिकों के लिए नहीं लिखा था। उन्होंने साफ लिखा प्रस्तावना में, पोप पॉल तृतीय को संबोधित करते हुए, कि गणित गणितज्ञों के लिए लिखा गया है।
मतलब वो इसे खगोल विज्ञान की नई टेक्स्ट बुक बनाना चाहते थे।
एकदम, एक ऐसी किताब जो ज्यादा सटीक हो, ज्यादा सुसंगत हो। उनका एक और छोटा लेख था, लेटर अगेंस्ट वॉर्नर। उससे भी पता चलता है कि वो अपने समय के दूसरी खगोलविदों की गणनाओं में गलतियां पकड़ने में कितने माहिर थे। उनकी तकनीकी पकड़ बहुत मजबूत थी।
क्या मतलब रातों रात क्रांति आ गई?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। शुरुआत में इसकी चर्चा बहुत सीमित रही, सिर्फ जो विशेषज्ञ खगोलविद थे या गणितज्ञ थे उन्हीं के बीच।
अच्छा।
और एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, किताब जब छप रही थी तो उसकी देखरेख एक लूथरन धर्मशास्त्री कर रहे थे, एंड्रियस ओसियंडा।
हाँ?
उन्होंने कोपरनिकस की इजाजत के बिना किताब की शुरुआत में अपनी तरफ से एक भूमिका जोड़ दी बिना नाम के।
अरे क्या लिख दिया उसमें?
ओसियंडर ने उसमें लिख दिया कि भाई इस मॉडल को ब्रह्मांड का सच्चा नक्शा मत समझिए, इसे बस गणना करने का एक आसान तरीका, एक गणितीय परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस समझिए।
ऐसा क्यों किया उन्होंने?
शायद इसलिए ताकि चर्च या जो कट्टरपंथी लोग थे उनका गुस्सा तुरंत ना भड़के, एक तरह से बचाव का रास्ता बना दिया।
तो क्या इसका कुछ असर हुआ?
हाँ, शायद कुछ हद तक हुआ। कई खगोलविदों ने कोपरनिकस की दी हुई जो ग्रहों की स्थितियां बताने वाली सारणियां थीं, टेबल्स थीं, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि वो टॉलेमी की टेबल से ज्यादा सटीक थीं।
लेकिन
उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि पृथ्वी सच में घूमती है। वो कहते थे हाँ हिसाब लगाने के लिए ये मॉडल ठीक है, पर असलियत में तो पृथ्वी ही केंद्र में है।
अच्छा, तो फिर जिससे हम असल में कोपरनिकन क्रांति कहते हैं उसकी असली शुरुआत कब और कैसी हुई? इतनी धीमी क्यों रही फिर?
असली क्रांति आने में कई दशक लग गए, 50-60 साल या उससे भी ज्यादा। इसकी नींव रखी अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने।
जैसे कि?
जैसे जोहानस केपलर। केपलर ने कोपरनिकस के मॉडल को ही इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने ग्रहों की कक्षाओं को और सटीक समझा। उन्होंने बताया कि कक्षाएं गोल नहीं बल्कि अंडाकार हैं। उन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए।
और गैलीलियो, उनका नाम तो बहुत जुड़ा है इससे।
हाँ, फिर आए गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन बनाई और उससे आसमान में देखकर ऐसे सबूत जुटाए जिनसे सूर्य केंद्रित मॉडल को जबरदस्त समर्थन मिला।
क्या देखा उन्होंने?
उन्होंने देखा कि बृहस्पति ग्रह के भी अपने चांद हैं जो उसके चक्कर काट रहे हैं, मतलब हर चीज पृथ्वी के चक्कर नहीं काट रही। उन्होंने शुक्र ग्रह के चरण देखे जैसे चांद के होते हैं, जिससे साबित होता था कि वो सूर्य के चक्कर काटता है।
और तब जाकर चर्च की प्रतिक्रिया तीखी हुई।
हाँ बिल्कुल, गैलीलियो के समय तक आते आते कैथोलिक चर्च को लगने लगा कि ये विचारधारा खतरनाक है, ये बाइबल की व्याख्या के खिलाफ जा सकती है। तो 1616 में चर्च ने कोपरनिकियन वाद की निंदा कर दी और कोपरनिकस की किताब डी रेवोल्यूशनिबस उसको निषिद्ध पुस्तकों की सूची में डाल दिया, इंडेक्स ऑफ फॉरबिडन बुक्स।
कितने समय तक रही वो उस लिस्ट में?
करीब 200 साल तक, सोचिए।
बाप रे।
तो फिर अंतिम जीत कैसे हुई इस मॉडल की?
अंतिम और निर्णायक जीत हुई आइजैक न्यूटन के काम से। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। इससे पहली बार ये समझ आया कि आखिर क्यों ग्रह सूर्य के चारों ओर टिके रहते हैं। वो भौतिक वजह मिले जो कोपरनिकस खुद नहीं दे पाए थे। न्यूटन ने गणितीय रूप से साबित कर दिया कि सूर्य केंद्रित मॉडल ही सही है।
और आज तो हम कोपरनिकन क्रांति शब्द का इस्तेमाल सिर्फ खगोल विज्ञान के लिए नहीं करते, है ना? बिल्कुल सही कहा। आज ये शब्द किसी भी ऐसे बड़े वैचारिक बदलाव के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारी किसी पुरानी जमीवी सोच या विश्व दृष्टि को पूरी तरह बदल दे। जैसे डार्विन का विकासवाद एक कोपरनिकन क्रांति थी जीव विज्ञान में, फ्रॉयड का मनोविश्लेषण मनोविज्ञान में। ये दिखाता है कि कोपरनिकस के काम का असर कितना गहरा और स्थायी रहा है। उन्होंने सिर्फ ग्रहों की जगह नहीं बदली, उन्होंने ब्रह्मांड में इंसान की जगह के बारे में हमारी पूरी सोच बदल दी, हमें हमारी विशेष स्थिति से हटा दिया।
उस जमाने में जब कोपरनिकस थे तब तो आज की तरह नोबेल पुरस्कार या रॉयल सोसाइटी जैसी वैज्ञानिक संस्थाएं नहीं थीं, तो उन्हें अपने जीवन काल में किस तरह की पहचान या सम्मान मिला, कैसे नापा जाता था सम्मान तब?
हाँ ये सही सवाल है। उस समय पहचान का पैमाना अलग था। चर्च में अगर आपको कोई अच्छा पद मिला है वो सम्मान था, आपके साथी विद्वान आपकी इज्जत करते हैं वो सम्मान था, शासक आपसे सलाह लेते हैं वो सम्मान था।
तो कोपरनिकस के लिए ये सब था?
बिल डॉक्टर माना जाता था, एक समझदार प्रशासक माना जाता था, अर्थव्यवस्था के जानकार के तौर पर उनकी इज्जत थी। पोलैंड के राजा तक ने उनसे मुद्रा सुधार पर सलाह मांगी थी।
और वैटिकन ने भी उनसे संपर्क किया था शायद।
हाँ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, 1514 में वैटिकन कैलेंडर में सुधार करना चाहता था और उन्होंने कोपरनिकस से भी राय मांगी। हालांकि कोपरनिकस ने तब पूरी तरह सहयोग नहीं किया, उन्हें लगा कि पहले सूर्य और चंद्रमा की गति को और ज्यादा सटीक रूप से जानना जरूरी है, तभी कैलेंडर ठीक हो पाएगा।
ये भी उनकी वैज्ञानिक ईमानदारी दिखाता है।
बिल्कुल, और रेटिकस का उनसे मिलने आना एक उभरता हुआ प्रतिभाशाली प्रोटेस्टेंट गणितज्ञ अपना विश्वविद्यालय छोड़कर एक कैथोलिक कैनन के पास ज्ञान हासिल करने आ रहा है।
हाँ, ये तो उनके कद का बहुत बड़ा सबूत है।
यकीनन, ये उस दौर में धार्मिक बंटवारे से ऊपर उठकर उनके ज्ञान के प्रति गहरे सम्मान को दिखाता है। और एक और दिलचस्प बात है, 1533 के आसपास पोप क्लेमेंट सप्तम ने भी कोपर्निकस के काम की तारीफ सुनी थी और कहा गया था कि इन्हें प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
अच्छा, पोप ने भी?
हाँ, और कोपर्निकस ने अपनी किताब आखिरकार समर्पित भी किसको की? पोप पॉल तृतीय को। तो ये दिखाता है कि चर्च के साथ उनका रिश्ता शुरुआत में काफी जटिल था, लेकिन दुश्मनी वाला नहीं था, कम से कम शुरू में तो बिल्कुल नहीं।
कोपर्निकस के अपने कुछ शब्द, उनके कुछ कथन हैं जो उनके काम और उनकी सोच को समझने में मदद करते हैं। जैसे आपने पहले जिक्र किया कि वो एक तरह के सामंजस, एक हारमोनी की तलाश में थे।
हाँ, उन्होंने अपनी किताब की प्रस्तावना में बहुत खूबसूरती से लिखा है। वो कहते हैं कि पुराने खगोलशास्त्री दुनिया की मशीन की गतिविधियों की अधिक निश्चित योजना पर सहमत होने में असमर्थ थे, जिसे हमारे लिए सभी के सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे व्यवस्थित कलाकार द्वारा स्थापित किया गया है।
सर्वश्रेष्ठ और सबसे व्यवस्थित कलाकार मतलब ईश्वर?
हाँ, उनका इशारा ईश्वर की तरफ ही था। इससे उनकी प्रेरणा साफ जाहिर होती है। वो ब्रह्मांड में एक सुंदरता खोज रहे थे, एक व्यवस्था, एक गणितीय सामंजस्य। उन्हें लगता था कि टॉलेमी का जो सिस्टम था वो बेढंगा सा था, उसमें वो सुंदरता नहीं थी जो ईश्वर की बनाई दुनिया में होनी चाहिए।
और उनके अपने मॉडल का निचोड़ क्या था, उनके अपने शब्दों में अगर कहें तो?
किताब के पहले भाग में वो बिल्कुल सीधे और सपाट शब्दों में लिखते हैं, हालांकि हर चीज के बीच में सूर्य स्थिर है।
बस इतना?
हाँ, सरल सीधा, मगर कितना क्रांतिकारी। पूरी किताब इसी एक वाक्य की बुनियाद पर खड़ी है।
क्या वो विज्ञान और धर्म को एकदम अलग अलग खांचों में देखते थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उनमें एक गहरा रिश्ता देखते थे। उनका एक और बहुत सुंदर कथन है जो शायद कम लोग जानते हैं। वो कहते हैं, ईश्वर के शक्तिशाली कार्यों को जानना, उनकी बुद्धि, महिमा और शक्ति को समझना, निश्चित रूप से ये सब सर्वोच्च ईश्वर की पूजा का एक सुखद और स्वीकार्य तरीका होना चाहिए, जिनके लिए अज्ञानता ज्ञान से अधिक कृतघ्न नहीं हो सकती।
वाह, मतलब ब्रह्मांड को समझना भी एक तरह की ईश्वर की पूजा है।
हाँ, उनके लिए वैज्ञानिक खोज एक तरह की धार्मिक भक्ति ही थी। ईश्वर की बनाई दुनिया को समझना, उसकी कारीगरी की तारीफ करना।
आजकल कोपर्निकस की कहानी को कैसे याद किया जाता है? क्या उन पर फिल्में बनी हैं या नाटक लिखे गए हैं?
देखिए, सीधे तौर पर कोपर्निकस की जिंदगी पर केंद्रित बहुत ज्यादा पॉपुलर फिल्में या नाटक शायद ना मिले, लेकिन उनकी जो क्रांति है, उनके विचार का जो असर है, उसका जिक्र बार बार आता है।
कहाँ पर?
जैसे कार्ल सेगन की मशहूर टीवी सीरीज थी कॉस्मोस, या बाद में नील डिग्रेस टाइसन ने जो बनाई, उनमें कोपर्निकस को विज्ञान के इतिहास में एक बहुत अहम मोड़ की तरह दिखाया गया है।
हाँ, मैंने देखी है।
हाँ, और जैसे बर्तोल ब्रेक्ट का मशहूर नाटक है गैलीलियो की जिंदगी, वो भले ही गैलीलियो पर है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से कोपर्निकस की विरासत और उस समय की स्थापित सत्ता के साथ जो टकराव हुआ, उसी को दिखाता है।
तो ये जो रूपांतरण होते हैं, ये अक्सर किस बात पर ज्यादा जोर देते हैं?
अक्सर ये कहानी एक अकेले प्रतिभाशाली नायक की कहानी बन जाती है। एक ऐसा हीरो जो सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच और ताकतवर संस्थाओं को चुनौती देता है। हालांकि कभी कभी ये चित्रण थोड़ा ज्यादा सरल या नाटकीय हो जाता है, क्योंकि असलियत यह है कि कोपर्निकस के विचारों का असली टकराव और संघर्ष तो उनकी मौत के बाद शुरू हुआ। वो खुद अपनी जिंदगी में काफी हद तक विवादों से बचे रहे थे।
सही बात है।
लेकिन ये समझना जरूरी है कि आज का पूरा आधुनिक विज्ञान, हम जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजते हैं, दूसरी दुनियाओं की खोज करते हैं, यहां तक कि साइंस फिक्शन की जो कहानियां हम पढ़ते सुनते हैं, वो सब कहीं ना कहीं कोपर्निकस की उसी बुनियादी सोच पर टिकी हैं।
किस सोच पर?
कि हमारी पृथ्वी कोई अनोखी, कोई बहुत विशेष जगह नहीं है। ये ब्रह्मांड की अनंत दुनियाओं में से बस एक है जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। उनका काम सिर्फ ग्रहों के नक्शे बदलना नहीं था, ये ब्रह्मांड में हमारे अपने वजूद को, हमारी अपनी जगह को समझने का नजरिया बदलना था।
वाकई ये सोचना भी कि हम केंद्र नहीं है, ये कितना बड़ा मानसिक बदलाव रहा होगा उस समय के लोगों के लिए।
बिल्कुल, और शायद यही हमें आज के लिए एक चिंतन का बिंदु देता है।
क्या?
कि कोपर्निकस ने सिर्फ पृथ्वी को उसकी जगह से नहीं हिलाया, उन्होंने इंसान के अहंकार को हिलाया, हमारे सोचने के ढंग को हिलाया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जिन बातों को हम बिल्कुल पक्का मान लेते हैं, जो सदियों से चली आ रही सच्चाई लगती हैं, उन पर सवाल उठाना कितना जरूरी है। क्योंकि यही सवाल विज्ञान में, समाज में, यहां तक के हमारे अपने निजी जीवन में भी तरक्की का, आगे बढ़ने का रास्ता खोलते हैं।
तो शायद हमें सोचना चाहिए कि आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी स्थापित पक्की मानी जाने वाली धारणाएं हैं जिन पर शायद हमें कॉपरनिकस की तरह सवाल उठाने की जरूरत है।
बहुत गहरा विचार है ये।
फिर
मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकतर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।